एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1800833231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195728592।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु तेरा प्यार है कितना महान, पापी को जो देता है जीवन प्रदान।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदय को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मेरे श्रोताओं के संग विशेष रूप से हो पिता, तू उन्हें मदद कर तेरे वचनों को वे लोग सुन करके समझने सके और तेरे राह में चलने सके। उन्हें तेरा आत्मा से प्रेरित कर और मेरे संग भी हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है जो भूखे और प्यासे हैं। आई हम आज यीशु मसीह के धन्य वचन जो मती 5:3-12 में मिलता है, उसका चौथा धन्य वचन पर ध्यान दे। यह मती 5:6 में मिलता है, आइए हम इसे पढ़े। यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हर किसी ने शारीरिक भूख और प्यास से जुड़ी लालसा का अनुभव किया है। इन जरूरतों को भोजन की एक प्लेट या गिलास पानी से आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की भूख और प्यास, धार्मिकता की लालसा केवल ईश्वर ही संतुष्ट कर सकता है। प्यारो, आध्यात्मिक अकाल के लिए परमेश्वर का उत्तर है। प्रत्येक आशीर्वाद के साथ मसीह के सच्चे शिष्य का चरित्र अधिक स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। प्रत्येक बदले में ईसाई चरित्र के एक अलग पहलू पर प्रकाश डालता है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ्य है जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा ना हो। निश्चित रूप से धार्मिकता के लिए भूखा और प्यास आज से पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही है। प्रभु यीशु के महिमा में आने से ठीक पहले होने वाले चिन्हों के बारे में बोलते हुए भविष्यवक्ता आमोस ने एक आत्मिक अकाल की भविष्यवाणी की थी। उसने कहा है, आमोस 8:11 में हम इसे पाते हैं, ना तो रोटी की भूख होगी ना पानी की प्यास होगी, परंतु प्रभु के वचनों को सुनने की प्यास होगी। आमोस 8:11। तृप्त होने के लिए, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास होना ही काफी नहीं है, फिर भी हमें उसके पास जाना चाहिए जो हमारे लिए ज्ञान और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा बना है। कहता है पौलुस उसकी पत्री में जो हमको मिलता है 1 Corinthians 1:30 में, एकमात्र धार्मिक व्यक्ति होने के नाते केवल वही लोगों को जीवन के जल के स्रोत पर मुक्त में आने और पीने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम है। इसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22:17 में। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा हमें जीवन के जल के स्रोत से मुफ्त में आकर के पीने के लिए निमंत्रण करता है। आई हम मती 5:6 में जो धन्य वचन दिया गया है उसको परिभाषित करें। इसको परिभाषा देना आवश्यकता है। इस चौथे आशीर्वाद में मसीह किस प्रकार की धार्मिकता का उल्लेख कर रहे हैं? मती 5:6 में हम इसे पढ़ते हैं, नया नियम में इसके उपयोग के हर उदाहरण में 94 बार डिकायोसुने का अनुवाद धार्मिकता किया गया है। यूनानियों के बीच धार्मिकता में स्वीकृति रीति रिवाजों के अनुरूप होना शामिल था। यहूदियों के लिए यह अनिवार्य रूप से यहूदी परंपरा द्वारा व्याख्या की गई कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होना था। आप देख सकते हैं गलातियों 2:21 में। लेकिन मसीह के अनुयायियों के लिए धार्मिकता ने एक व्यापक अर्थ ग्रहण किया। अपनी खुद की धार्मिकता स्थापित करने के बजाय ईसाइयों को खुद को परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन करने के लिए बुलाया गया है। रोमियो 10:3 में हम पाते हैं, उन्होंने उस धार्मिकता की तलाश की जो मसीह के विश्वास के माध्यम से है, वह धार्मिकता जो विश्वास से परमेश्वर की है। फिलिपियों 3:9। धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे जो हम मत्ती 5:6 में पाते हैं, यह रूपक मसीह के श्रोताओं के लिए विशेष रूप से सार्थक था, जिनमें से अधिकांश ने कभी ना कभी भूख और प्यास का अनुभव किया था। इसके अलावा जब इज़राइल मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय धार्मिकता के वादे से अधिक कोई शब्द उनके कानों को सुखद नहीं लग सकता था। उनकी आशा फिर से जागृत हुई कि वह उन्हें उनके बंधन के जुए से मुक्त करेगा, धार्मिकता स्थापित करेगा और सभी लोगों पर व्यवस्था लागू करेगा। केवल वे लोग जो भोजन की कमी से भूखे या पानी की कमी से भूखे रहने वाले व्यक्ति की तरह उत्सुकता से धार्मिकता की लालसा रखते हैं, वे इसे पाएंगे। कोई भी संसारिक स्रोत आत्मा की भूख और प्यास को संतुष्ट नहीं कर सकता है। अयोग्यता की भावना हृदय को धार्मिकता के लिए भूख और प्यास की ओर ले जाएगी, और यह इच्छा निराश नहीं होगी। जो लोग अपने हृदय में यीशु के लिए जगह बनाते हैं, वे उसके प्रेम को महसूस करेंगे। जो लोग परमेश्वर के चरित्र की समानता धारण करने की इच्छा रखते हैं, प्यारों, वे संतुष्ट होंगे। मत्ती 6:33 में हमें धार्मिकता की खोज करने के लिए कहता है। मत्ती 6:33 में हमें पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करने के लिए कहा गया है। ईश्वर की धार्मिकता मसीह की निरंतर चिंता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल दैनिक जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की तलाश करते हैं, अर्थात वे जीवन की सच्ची वास्तविकता के प्रति अंधे हैं। ईश्वर और उनके उद्धारक कार्य से अनभिज्ञ हैं। जो लोग धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तब तक कभी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि उन्हें सच्ची धार्मिकता यीशु मसीह के व्यक्तित्व में ईश्वर की धार्मिकता ना मिल जाए। धार्मिकता प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर का प्रकाश और जीवन है। परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में सन्निहित है, और हम उसे ग्रहण करके धार्मिकता प्राप्त करते हैं। भविष्यवक्ता दानियल के अनुसार मसीहा पृथ्वी पर किस प्रकार की धार्मिकता लाएगा और इसे ऐसा क्यों कहा गया है, उसके विषय में हम दानियल 9:24 में पढ़ते हैं। प्यारों, इसमें कहा गया है कि यीशु मसीह अपने लोगों के लिए धार्मिकता का राज लाएगा, और यह युगों युगों की धार्मिकता प्रकट होगा। लोग अधर्म के लिए सुलह और उस शाश्वत धार्मिकता के बारे में जानेंगे जिसे मसीहा ने अपने बलिदान के माध्यम से लाया है। कलवरी का क्रूस महान केंद्र है। इस सत्य पर अमल करने से मसीह का बलिदान प्रभावशाली हो जाएगा। यह वही है जो गैब्रियल ने दानियल को उत्कृष्ट प्रार्थना के उत्तर में प्रकट किया था। यह वही था जिसके बारे में मूसा और एलिया और मसीह ने अपने रूपांतरण के समय बात की थी। क्रूस के अपमान के द्वारा वह उन सभी को शाश्वत मुक्ति प्रदान करने वाला था जो उसके पीछे चलेंगे, या सकारात्मक प्रमाण देते हुए कि दुनिया से अलग हो गए हैं। वे दुनिया से अलग हो गए हैं। जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको अपनाते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह में उन्हें धार्मिकता देता है और पवित्र बनाता है। आइए हम मसीह का धार्मिकता को प्राप्त करें। रोमियो 3:21-26 में हम यह पाते हैं, जब प्रेम और कृतज्ञता में यीशु में विश्वास करने वाला व्यक्ति बिना किसी शर्त के खुद को परमेश्वर की दया और इच्छा के प्रति समर्पित कर देता है, तो लांछित धार्मिकता और प्रदान की धार्मिकता उसे मिलती है। और जैसे जैसे वह प्रतिदिन विश्वास, समर्पण और संगति के इस अनुभव में आगे बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता जाता है, जिससे वह पवित्रता की प्रदान की गई धार्मिकता को अधिक से अधिक प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और इस धार्मिकता को आगे प्राप्त करते जाता है। जो मनुष्य विश्वास के द्वारा मसीह की धार्मिकता को पहन लेता है, वे अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप देंगे। रोमियो 6:18-19 में हम यह पाते हैं। कभी कभी हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि मसीह की धार्मिकता को धारण करने का क्या अर्थ है, लेकिन यह जरूरी है कि हमें इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले के बारे में कोई भ्रम ना हो। बेशक मसीह में विश्वास द्वारा उधार मुफ्त है और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अमूल्य कीमत उसका जीवन है। हालांकि हमें अपनी पूरी रुचि और दृढ़ता के साथ मसीह की धार्मिकता और उसके उद्धार की तलाश करनी चाहिए। उसने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया और हमें ऐसे अमूल्य उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित करना चाहिए। जब हम स्वयं को मसीह के अधीन कर देते हैं तो हमारा हृदय उसके हृदय के साथ एक हो जाता है, हमारी इच्छा उसकी इच्छा में विलीन हो जाती है, हमारा मन उसके मन के साथ एक हो जाता है, हमारे विचार उसके अधीन हो जाते हैं, हम उसका जीवन जीते हैं। उसकी धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ने का यही अर्थ है। मसीह के धर्म का अर्थ पापों की क्षमा से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है हमारे पापों को दूर करना और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से रिक्त स्थान को भरना। जब मसीह आत्मा में शासन करता है तो पवित्रता होती है, पाप से मुक्ति मिलती है, सुसमाचार योजना की महिमा, परिपूर्णता, संपूर्णता जीवन में पूरी होती है। यह लिया गया है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन पृष्ठ 419-420 पृष्ठ से। अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम बहुत से उदाहरण बाइबल में पाते हैं इसके बारे में। हम पहला उदाहरण देखते हैं लूका 15:3-7 में। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत स्पष्ट रूप से सिखाता है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को तब बुलाता है जब वह अभी भी खोया हुआ होता है, और जब एक भी पापी पश्चाताप करता है तो पूरा स्वर्ग आनंदित होता है। यीशु ने इस सत्य की पुष्टि की जब उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका 19:10। खोए हुए लोग खोई हुई भेड़ों की तरह कभी भी अपने आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, ना तो अपनी बुद्धि से और ना ही इच्छा शक्ति के बल पर। यही कारण है कि जबकि हम अभी भी उसके शत्रु हैं, परमेश्वर हमें अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा अपने साथ मिलाता है। कहता है रोमियो 5:10, परमेश्वर का प्रेम हमसे इस रीति से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। पहला यूहन्ना 4:9-10 में यह लिखा है। फरीसी और चुंगी लेने वाले के दृष्टांत का मुख्य सत्य हमें यह है, यह बताता है कि जो अपने आप को अपना कमी महसूस किया और परमेश्वर से विनती किया, उसका दया मांगा, वही धर्मी ठहराया गया। फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत इस तथ्य को सटीक रूप से दर्शाता है कि लांछित केवल विश्वास के माध्यम से संभव है, ना कि कार्यों से। आत्मधार्मिकता से भरा हुआ फरीसी उन लोगों में से नहीं था जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे थे। उसने सोचा कि उसके असंख्य कार्य उसके लिए पर्याप्त थे। इसके विपरीत चुंगी लेने वाले ने केवल परमेश्वर की दया पर भरोसा किया। जब उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करो, लूका 18:13, निष्कर्ष में यीशु ने पुष्टि की, यह आदमी दूसरे की अपेक्षा धर्मी ठहरा कर अपने घर गया। यह हम लूका 18:14 में पाते हैं। उसी तरह बड़े कर्जदार के दृष्टांत में भी, जो हम मती 18:23-35 में पाते हैं, यह देख पाते हैं कि उधार मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन हमें विश्वास के द्वारा उसे यीशु मसीह से प्राप्त करना है। और जब हम उसे प्राप्त करते हैं, उसके बाद विश्वास का जीवन जीना है। जब हम विश्वास का जीवन जी रहे हैं, हम उसके ताकत से, उसके शक्ति से, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हम उसके कहे अनुसार, उसके वचनों के पीछे चलेंगे। हम अच्छे कामों से नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए बचाए गए हैं। अनुग्रह से तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और यह तुम्हारा अपना काम नहीं है, बल्कि परमेश्वर का दान है। कामों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कोई, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया कि हम उसके अनुसार चलें। यह हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:8-10 में। प्यारो, दृष्टांतों में सिखाया गया है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता उसके दया के कारण दिया जाता है। हमें विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त करना है, और उसके बाद विश्वास के द्वारा उसमें नया जीवन जीना है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में भी उड़ाव पुत्र ने अपने मुक्तापूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप शारीरिक और आध्यात्मिक भूख का अनुभव किया, और इसने उसे पश्चाताप की ओर अग्रसर किया। उसने अपने पिता द्वारा आशीर्वाद और दयालुता के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की खुशी का भी अनुभव किया। यह वृतांत पापी की स्वर्ग के लिए उसकी उपाधि और उसके लिए उसकी योग्यता दोनों के लिए परमेश्वर पर निर्भरता को कितनी अच्छी तरह से दर्शाया है। विवाह की भोज के दृष्टांत में भी हम पाते हैं किस तरह परमेश्वर हमें अपना धार्मिकता देकर अपने राज्य में हमें बुलाना चाहता है। विवाह के वस्त्र का दृष्टांत हमारे सामने सर्वोच्च महत्व का पाठ प्रस्तुत करता है। विवाह द्वारा मानवता का देवत्व के साथ मिलन दर्शाया जाता है। विवाह का वस्त्र उस चरित्र को दर्शाता है जो उन सभी में होना चाहिए जो विवाह के लिए योग्य अतिथि माने जाएंगे। अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु मसीह ने, अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता के द्वारा उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना संभव बनाया है। लांछित और प्रदान की गई धार्मिकता दोनों ही ईश्वर की कृपा के कार्य हैं। हमारे पास अपने आप में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें। हमारे पास आत्म प्रशंसा के लिए कोई आधार नहीं है। हमारी आशा का एकमात्र आधार मसीह की धार्मिकता है जो हमें दिया गया है, और जो हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करने वाली उनके आत्मा द्वारा बनाई गई है। प्रभु यीशु मसीह कानून को रद्द करने के लिए नहीं आए, और कानून का रद्द करने से कहीं दूर विश्वास इसे स्थापित करता है, रोमियो 3:31, और अनुग्रह इसके पालन को संभव बनाता है, रोमियो 8:4। यह इसलिए संभव है क्योंकि परमेश्वर अपने कानून को हृदय में लिखता है। यीशु की मांगे हृदय के गुप्त इरादों को गहराई से समझती हैं। प्यारो, हमें जिस धार्मिकता की खोज करनी चाहिए वह मसीह की धार्मिकता है, उसकी धार्मिकता का वस्त्र जो यहोवा की व्यवस्था के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता है। आइए हम यीशु के पास आए, उससे उसके प्रेम और उसके धार्मिकता को अपनाएं और धार्मिकता का वस्त्र पहने, वह हमें उसके राज्य में ले जाएंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देवे। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। तू हमें यीशु मसीह में बुलाया है धार्मिकता देने के लिए और धार्मिकता का वस्त्र देने के लिए। पिता परमेश्वर, हमें तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे बुलाहट को समझ सके और तेरे पास आए। मेरे श्रोताओं के संग हो, हम सबों के संग हो, कि हम तेरे पास आए, तेरा धार्मिकता का उपहार को हम ग्रहण करें और तेरे राज्य के लिए तैयार हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद।